जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे सिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय जय प्रह्लाद नृसिंह जय प्रह्लाद नृसिंह प्रह्लाद नृसिंह जय प्रह्लाद नृसिंह जय प्रह्लाद नृसिंह जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रह्लाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदी हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय आठ भगवान सिंह द्वारा असुरराज हिरण्यकशिपु का वध। श्लोक सत्रह। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं नित्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतादद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतादद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः एक पढ़ रहा है नहीं देख रहे बोलो बोलो अदृश्यतात् अद्भुत रूपम् अद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायं न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् माताजी सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् शब्दार्थ सत्यं सच विधातुं सिद्ध करने के लिए निज भृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्दों को प्रह्लाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की भगवान सर्वव्यापी है व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यतः दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद अपने दास प्रह्लाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है। भगवान श्रीहरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य जब हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है क्या वह इस खंभे में है तो प्रह्लाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रह्लाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रह्लाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। यद्यपि प्रह्लाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुकी थी किंतु प्रह्लाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्तों को प्रोत्साहित किया हो मत चिंतित हो मैं यहां उपस्थित हूं। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के भी वचन को रक्षा कर लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था न सिंह का। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः जत्पादपल्लवजुगं विनिधाय कुंभ द्वंदी प्रणाम समये सहगणाधिराज विज्ञान विहन्तु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतो मुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग श्री नृसिंह देव भगवान की। तो आज कौन सा विशेष दिन है? नृसिंह चतुर्दशी। तो आज के दिन क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? क्या हुआ था आज? भगवान नृसिंहदेव आविर्भाव हुए थे। कहां से? खंभे से आविर्भाव हुए हैं। हिरण्यकशिपु को क्या वरदान था? हिरण्यकशिपु पांच पन्ने हिरण्यकशिपु का प्रसंग कहां से शुरुआत होता? जब हिरण्याक्ष की वध कर दिए। कौन? भगवान वराहदेव। तब हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा आया, तब डिक्लार कर दिया कि जो विष्णु है सुअर का रूप धारण करके मेरा भाई को मार डाला, इसलिए हमारा परिवार का ये शत्रु है। कौन? विष्णु शत्रु है, हमारा फैमिली का ये एनिमी है। एक गदा पकड़ लिया, गदा पकड़ के अपने कांध में ढूंढने लगा। किसको? विष्णु। कहां गया भगवान विष्णु? आज मैं विष्णु को जान से नहीं छोड़ूंगा। कौन बोला? हिरण्यकश्यप। मेरे भाई को जो वध किया इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ढूंढते रहा, भगवान विष्णु कहीं मिला नहीं। तीनों लोग घूम के आ गया मर्त, क्योंकि भगवान को और कुछ लीलाएं करना था। प्रहलाद महाराज के इतने सारे प्रसंग, भक्त की महिमा को प्रकट कराना था, और भगवान अभी की उसको मार डाले। चाहते तो उस समय उसको समाप्त कर देते, लेकिन कई लीलाएं करना था। और ये सभी जगह घूमते घूमते कहीं भगवान को देखा नहीं। भगवान देखा? भगवान कहां बैठे थे? उसी के हृदय में बैठे हुए थे। जैसा कोई क्या होता है, मृग होता ना जिसकी कस्तूरी सिर पर आ जाता, सुगंध आता है, तो वो सुगंध उसी के सिर से आता है। वो सोचता है कहां से सुगंध आता है, वो घूमते रहता है, घूम घूम के पागल हो जाता है, बाद में तो शरीर त्याग देता। कौन? मृग ने। ये हिरण्यकशिपु इसे पागल हो गया। कहां गया विष्णु? ढूंढते रहा विष्णु उसके हृदय में बैठे, वो चारों साइड ढूंढ रहा भगवान विष्णु कहां है, और कहीं मिला नहीं। जब चारों साइड देखा, स्वर्ग में गया, यहां तक क्षीरसागर तक गया, इतनी प्रतापी था, चारों साइड धुमके आके डिक्लार कर दिया, बोला विष्णु सुसाइड कर दिया, समाप्त तो हो गया, किसका अभी विष्णु है नहीं, मैं चारों साइड देख लिया वो कहीं और है नहीं, डिक्लार कर दिया विष्णु मर गया बस। राक्षस लोग यही करते हैं, इसलिए आजकल भी कृतियों से भगवान कहे कि भगवान का ही मर, भगवान का ही मृत्यु हो जाता है, पेपर में आता है भगवान मर गए, अभी एक भगवान मर गए ना माड्रास में, भगवान मर गए, भगवान कैसे मरते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे बुद्धि है वो ऐसे ही बुद्धिमान, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस वो डिक्लार करते हैं। तभी तो आकर जब भगवान विष्णु को कहीं मिला नहीं, वापस आया उपासक के, आपको अपने देखा कि सभी घर में सब और दूसरे लोग भी बड़ा शोक शोक में है, दुख में है, उसकी भाभी है और भातीजे हैं, परिवार के सारे सदस्य, उसकी माँ सब दुखी है। तो बोला कि अभी तो मैं यदि स्वयं कुछ दुख प्रकट करूंगा बड़ा मुश्किल होगा, इनको सांत्वना देना चाहिए, इसलिए भगवद गीता कहना शुरू कर दिया। कौन राक्षसों को भगवद गीता भी आता है, हिरण्यकशिपु का उपदेश पढ़ोगे तो पूरा गीता ही उपदेश है। बोला कि तुम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, वो ऐसा ही पूरा उपदेश देते देने लगा बहुत, कहे कि और दो दो कहानी भी कहने लगा, सुजोग्य की कथा है कैसे महाराज सुजोग्य का मृत्यु हो गया था, उनके पत्नियां सब इसको घेर के बैठे, छोड़ते नहीं थे इसको है। तो अभी जमराज ने बालक रूप धारण, बच्चे रूप धारण करके आके उनको समझाया, कह देखो मेरा कोई माँ भरोसा कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं, मैं ऐसा ही अनाथ बालक हूं, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे मैं उसका सोचता नहीं हूं। और उन्होंने सुजोग्य वो जमराज स्वयं बालक रूप में आकर वो जो सुजोग्यों की पत्नियों को समझाया कि प्रकृति में संसार क्या है, सबको एक दिन जन्म लिया तो मरना पड़ता है और ये सब कहानी कह के बहुत समझाया। कौन हिरण्यकश्यप पूरा भगवत गीता कहा कि इनको सांत्वना कर, शांत कर दिया, बोला कि अभी इसको दुख शोक मत करो है, ऐसा ही तो सबको एक दिन जन्म लेना है, सब एक दिन शरीर त्यागना पड़ता है, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। और वो भी एक दिन चला गया, अच्छा है मेरे भाई क्षत्रिय है, युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मरा, वो निश्चित रूप में स्वर्ग में गया, इसमें कोई शंका नहीं है, आप लोग शांत रहो, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मेरा भातृहंता को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी भगवान बनूंगा। हिरण्यकशिपु प्रतिज्ञा ले रहा, क्या बनेगा भगवान, मंदराचल पर्वत में चला गया, किसके लिए तपस्या करने, कठोर तपस्या करने लगा 5000 साल तक है? तपस्या किया कैसे, एक अंगूठा पर खड़ा था है? एक अंगूठा पर खड़ा रहकर दोनों हाथ को ऊपर को करते हुए ऊर्ध्वमुख में एकाक्षर ब्रह्म जपते लगा, क्या ओम ओम, मायावादी लोग यही ओम शब्द, आप जो हरिदास ऋषिकेश में जाओगे तो वहां पर यही सुनाई पड़ेगा, सुबह सुबह क्या जपते लोग, निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, बस ब्रह्म को ध्यान करते करते स्वयं ब्रह्म बन जाएगा, स्वयं भगवान बन जाएगा बस। हिरण्यकशिपु ने भगवान बनने के लिए जो प्रयास किया था, जो तपस्या करने लगा, उसके तपस्या के बल इतनी हो गया कि शरीर के इसका शरीर को पूरा कीड़े मकोड़े सब खा गए, केवल क्या रह गया, हड्डी रह गया। तो अभी भी वो अपना तपस्या से विरत नहीं, उसके तपस्या के बल से इसकी सिर के ऊर्ध्व भाग से क्या निकलने लगा, ब्रह्मरंध्र से अग्नि निकलने लगा, इतना अग्नि बाहर जाता था कि लगता कि तीनों जगत को वो जला के राख बना देगा। देवता लोग ने भयभीत होकर भागने लगे ब्रह्मा जी के पास, क्या होगा अभी। तो ब्रह्मा जी ने बाध्य होकर हिरण्यकशिपु को शांत करने के लिए आए हैं, अपने हंस वाहन में आकर स्वर्ग से मैंने आकाश से ही थोड़ा अपने कमंडल से जल लेकर इसके ऊपर छिड़के, इसके ऊपर तो हिरण्यकशिपु का शरीर जो सारे हड्डी फड्डी था तो उसके ऊपर फिर मांस सब भर गई, बड़े सुंदर युवावस्था को प्राप्त कर लिया। जब देखा सामने इनको ब्रह्मा जी को, हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हो गया और ब्रह्मा जी को स्तुति करने लगा भगवान जैसे, कहा कि आप ही सृष्टि का स्रष्टा, इसका पालन करता, इसके संहार करता, आप ही भगवान है कि उनको भगवान बना दिया। ब्रह्मा जी कहेंगे मैं क्या बोलूं, ये बोलने पर भी सुनेगा नहीं, जो बोलना है चलो बोलने दो इसको है? और कहेगा आप ही भगवान है इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए, अमर बना दीजिए, मैं जैसे मरूंगा नहीं, मेरा मृत्यु न होगा है? जो देव जो राक्षस होते हैं इसी प्रकार किसी भी लोग को भगवान कहने के लिए तैयार है, जिनके माध्यम से उनकी इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त हो जाता है, उसको भगवान कहते हैं। प्रभुपाद ने जैसे भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि वो कलकत्ता में एक व्यक्ति रहता था, वो हिटलर को भगवान कह के पूजा करता था, हैं? हिटलर का फोटो रख के क्या करता था, सुबह स्नान करके पहले हिटलर की आरती करता था, जय हिटलर हरे। तो भाई क्या कारण, क्या बोला कि हिटलर ने सेकंड दूसरा जो विश्व युद्ध जय है इसी कारण हुआ था, और मेरे तो 50-60 हजार का बिजनेस छोटा सा था, लेकिन ये हिटलर का कारण से जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, मैंने कलाबाजारी करके ब्लॉक स्टक रख के ऐसे करके अभी करोड़पति बन गया। तो यदि हिटलर का कारण यदि नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, फिर मेरा बिजनेस, मैं तो वही गरीब होकर रहता। तो ऐसे आदमी के लिए मैं करोड़पति बना, तो इसलिए मेरे लिए यही भगवान है। तो हिरण्यकश्यप भी सोचा यदि ये ब्रह्मा जी मुझे वरदान देना आया, यही आया मेरा तपस्या को सुनकर आया, तो मेरे लिए यही भगवान है और इसी से मुझे कैसे भी पटाके इनसे वरदान लेना है। वो भी जानता है हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, कौन, ब्रह्मा, लेकिन फिर भी कहला कि आने आप भगवान है। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो मैं एक स्वयं अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमर बनाऊंगा। तो बोला कि अरे ये तो बर देने वाला है नहीं, आया सामने, लेकिन ये तो बूढ़ा मना कर रहा नहीं देगा, बोलता कि तो अमर बर नहीं हो सकता। बोले बुढ़ा से कुछ मांगना पड़ेगा इनडायरेक्टली है। ब्रह्मा जी चार चार मथा है और दाढ़ी भी पाक गया थोड़ा थोड़ा, अभी क्या करूं, इससे मेरे को इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। कौन बोला, हिरण्यकश्यप। तो आपने बुद्धि खटाया। तो बोला ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं, मुझे अमर बनाने नहीं देगा, ये इनडायरेक्टली मांगता हूं। क्या ठीक है, आपने तो सबको सृष्टि किया, आपका सृष्टि में 84 लाख जोनी में भी जितनी भी सृष्टि हुए किसी के हाथ में जैसा मेरा मृत्यु नहीं होगा, 84 लाख जोनी में किसी भी व्यक्ति के हाथ से मेरी मृत्यु जैसा नहीं होगा। देवता राक्षस और मनुष्य जक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी प्राणी आप सृजन किया किसी के हाथ में मेरी मृत्यु नहीं होगा। मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, जल स्थल अंतरिक्ष कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं होगा। हैं? और क्या मांगा, अंदर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, और छह ऋतु आता है, हैं? वर्षा क्या ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत आदि ये ऋतु में भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने के अंदर किसी भी महीना में नहीं मरूंगा। बोला अच्छा, महादेव सब सुन सुन के तथास्तु कहना पड़ा इनको, क्योंकि नहीं तो ये फिर तपस्या करेगा, सारे नष्ट कर देगा, प्रलय कर देगा, पर ध्वंस कर देगा, जला के राख बना देगा, तपस्या की इतनी बल होता है। इसीलिए संसार में कहा जाती कोई कोई शक्तिमान शक्ति माने पावरफुल बनना चाहता है, इसको क्या करना पड़ता है, तपस्या। राक्षस इसको जानते हैं, तपस्या करते हैं, कोई कठोर तपस्या करेगा, ऑस्टेरिटी करेगा, बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया, सारे कर दे के फिर सोचने क्या करूं, उनको बोलते दिया। तो इसलिए हिरण्यकशिप को वरदान में से एक वरदान था कि 12 महीने में नहीं मरेगा। तो आज का जो दिन है 12 महीने के अंदर आता कि ना अलग से आता है, 12 महीने के अंदर कोई महीना होता है कि नहीं होता। और पुरुष मास चल रहा है अभी, हैं? कौन सा महीना है ये, कौन सा महीना चल रहा है? तो आप फिर आज कैसे नृसिंहदेव प्रकट हो कि मारे, उसे मारे थे नृसिंहदेव अधिक मास में, हैं? क्योंकि 12 महीने में नहीं मरेगा, इसलिए पुरुषोत्तम मास व अधिक मास में नृसिंहदेव प्रकट होकर उसको वध किए थे। तो आज तो वो अधिक मास नहीं ना, पुरुषोत्तम मास नहीं, आज वैशाख महीना है, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, इसी को नृसिंह चतुर्दशी व्रत के रूप में माना जाता है, नृसिंहदेव के आविर्भाव तिथि के रूप में। नृसिंह चतुर्दशी व्रत का अर्थ नृसिंहदेव के आविर्भाव, अर्थात नृसिंहदेव इस धरा पर जब सबसे पहले अवतीर्ण हुए थे। प्रत्येक भगवान विष्णु के जितने भी नाम है आध्यात्मिक जगत में उनकी नित्य लोक रहता है, नृसिंह भगवान का भी अपने नित्य लोक है वैकुंठ जगत में। क्या, कौन सा लोक, नृसिंह लोक। भगवान उसी धाम से फिर अपने नित्य धाम से वैकुंठ जगत से अवतरित होते हैं इस धरा पर, विशेष लीलाओं को प्रकट करने के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान अपने नित्य धाम से यहां पर अवतरित होते हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं वैकुंठ से ये धरा पर, उसको कहते हैं अवतार, अवतरण करते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो इसलिए भगवान नृसिंहदेव सृष्टि के अनादि काल से ही है वैकुंठ जगत, लेकिन भक्तों की उनकी विशेष भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परित्राणाय साधुनां, ये मुख्य उद्देश्य है भगवान को धरा पर आना, तो इसलिए आते हैं। लेकिन ये नृसिंह ने जो चतुर्दशी व्रत हम पालन करते हैं वैशाख शुक्ल एकादश वैशाख शुक्ल चतुर्दशी में, इसी दिन नृसिंहदेव ने इसको वध नहीं किए, किसको? हिरण्यकशिपु को। हैं? हिरण्यकशिपु को मारे थे कब? मल मास में, अधिक मास में, क्योंकि 12 महीने में मरेगा नहीं वो, इसलिए भगवान ने ऐसे ही पद्म पुराण में विस्तार में इसकी वर्णन की गई, तो मरा था। तो आज फिर व्रत क्यों पालन कर रहे आज? नृसिंहदेव जब ये धरा पर पृथ्वी पर पहले बार अवतरण हुए थे किसी भक्त को इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो दिन आज ही था। वो भक्त और दूसरे कोई था, उसके नाम था, दोनों भक्त रहते थे, नृसिंहदेव के दो महान भक्त थे, हरित मुनि और पद्मावती। ये दोनों सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश, अभी भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी अभी पाकिस्तान में बहती है, पवित्र नदियों में से एक नदी के नाम है क्या? सिंधु। गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी, सिंधु नदी आम देखे नहीं क्योंकि पाकिस्तान में बहती है, यहां दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पवित्र नदी है। उस सिंधु नदी के किनारे एक डिस्ट्रिक्ट आज भी है, मुल्तान, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश में है, वहां पर ये दोनों व्यक्ति रहते थे, कौन? पद्मावती और हरित मुनि। ये दोनों कठोर तपस्या किए, हजार हजार साल, लगभग 5000 साल तक ऐसे कठोर तपस्या करने लगे, सत्य युग की घटना सृष्टि के प्रारंभ से। तो उन्हें चाहते थे कि भगवान को पुत्र रूप में, पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए अभिलाषा रख के तपस्या किए। तपस्या में प्रसन्न होकर उनके सामने नृसिंहदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहे कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहे कि हमें तो आपके समान एक पुत्र चाहिए, आपके समान। भगवान सोचने लगे मेरा समान कौन हो सकता है? हैं? मुझे तो वेदों में क्या कहा गया, गीता में भी कहा गया, असमर्ध, असम ऊर्ध, मेरे समान कोई नहीं होता है, मेरे ऊपर ऊर्ध में कोई नहीं होता है। और ये कहते कि आपके समान पुत्र चाहिए, इसका अर्थ क्या होता? मुझे ही पुत्र रूप में ये चाहते हैं। हैं? भगवान कहेगी तो आप लोग कह रहे कि मेरे समान पुत्र कौन हो सकता है, मेरे समान इस संसार में कोई नहीं है, इसका अर्थ आप मुझे ही पुत्र रूप में चाहते हो। लेकिन देखो माता जी, पद्मावती को संबोधन करते हुए भगवान नृसिंहदेव ने कहे कि मैं आपकी गर्भ में आना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं स्वेच्छा से अभी बाल रूप को धारण कर लेता हूं आपके सामने ही, बाल नृसिंह छोटा बालक रूप धारण कर लेता हूं, आपकी आप मुझे गोद में ले सकते हैं, इसी रूप में आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगा मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का। तो इसी भगवान नृसिंहदेव इस प्रकार कहते हुए तुरंत ही उनके सामने बाल नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए, छोटे नृसिंह है, बच्चे नृसिंह, सिंह का मुख और शरीर मनुष्य का। तभी लीलावती ने इनको लालन पालन किए, पद्मावती और हरित मुनि की इच्छा पूर्ण हुआ, बाल नृसिंह के रूप में भगवान आज के दिन प्रकट हुए थे, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन। तभी उन्होंने लीलावती की गोद में, मान्य सॉरी पद्मावती की गोद में आए और भगवान ने ये उनको वरदान दिया और डिक्लार किया कि जो आज के दिन विशेष रूप में मुझे मेरे पिताजी और माताजी की गोद में बाल नृसिंह के रूप में पूजन करता है, श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, उसके समस्त बाधा विघ्नों को इसी जगत से समाप्त करते हुए मेरे नित्य धाम में उसको मैं स्थान प्रदान करता हूं। इसलिए पद्म पुराण कहे कि यदि कोई वहां पर जाकर मुल्तान प्रदेश में सिंधु नदी में स्नान करते हुए बाल नृसिंह को माता पद्मावती की गोद में देख ले, दर्शन कर लेता है, उसके जीवन धन्य धन्य हो जाता है, संपूर्ण सफलता उसको प्राप्त हो जाता। तो ये रहस्य बता गया, लेकिन आज पाकिस्तान में जहां जैसे पद्म पुराण वर्णन नहीं, वहां जाने से ऐसे कुछ कई लोग गए हैं रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए कुछ है नहीं, जो मुस्लिम सब रह रहे हैं। अब ऐसे पद्म पुराण बता गया, कलयुग में सब जवान लोग आएंगे उधर, इसलिए तीर्थ लुप्त हो जाएगा, भगवान तीर्थ वहां पर गुप्त रूप से रहेंगे, छुप जाएंगे। तो इसलिए नृसिंह चतुर्दशी की व्रत हम इसलिए पालन करते हैं, ये व्रत अनादिकाल से है। हिरण्यकशिपु को वध को वध करने के बहुत पहले, प्रहलाद को, प्रहलाद जी के प्रकट होने के पहले भी ये व्रत संसार में था, क्योंकि नृसिंहदेव को, नृसिंहदेव ने प्रहलाद ने जो आश्वासन दे रहे थे, गोद में बैठाए थे, हिरण्यकशिपु को तो वध कर दिए। हिरण्यकशिपु को वध करने के प्रांत नृसिंहदेव क्रोधित, इतने क्रोधित थे, हिरण्यकशिपु का जो हजार अनुजाई थे, हजार हजार अनुजाई थे, इनको भी सारे को समाप्त किया, विशाल विराट रूप धारण करके हजार हजार हाथ को प्रकट किए। कौन? नृसिंहदेव। दुर्गा देवी के 10 हाथ देखे होंगे, नृसिंहदेव तो हजार हाथों को प्रकट किया और सारे राक्षस को नाखून से फाड़ फाड़ के फेंक दिए। हजारों राक्षस को वध करने के प्रांत, और कोई बचा नहीं, कोई बच गया तो सब भाग गए कोई डर से, और आसपास में कोई देखे नहीं। नृसिंहदेव फिर गर्जना कर रहे थे, और कोई है सामने में है? भगवान ने वीर रस को आस्वादन कर रहे थे और कहे के, और तो कोई देखा ही नहीं पड़ा, तभी भी गर्जना कर रहे थे, भीषण गर्जना, जैसे तीनों लोग को पूरा ध्वंस कर देंगे लग रहा था। और तभी सब लोग आए, देवता लोग ने प्रार्थना करने के लिए है? ब्रह्मा जी पहले आए, देखे कि हिरण्यकशिपु वध हो गया, सारे राक्षसों की समाप्त हो गया, सब देवता लोग ने आकाश में छुप छुप के देख रहे थे युद्ध, सब नीचे उतरे और आए, सभी एक एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आकर प्रार्थना करने लगे, शंकर जी प्रार्थना करने लगे, इंद्र प्रार्थना करने लगे, 33 कोटी देवता सब एक यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर है, सब हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करके थक गए। नृसिंहदेव क्यों शांत हैं? वो तो और गर्जना करते रहे है, क्रोध मूर्ति में थे। बोले अभी करेंगे क्या? देवता लोग सोच रहे कि ये तो प्रलय हो जाएगा लग रहा है, एक प्रलय कर, एक कुत्ता मारने के लिए इनको प्रार्थना की, ये प्रकट हुए, वो मर गया, कौन? हिरण्यकशिपु। लेकिन अभी तो दूसरा विपद आ गया, अभी इनको कौन शांत करेगा, ये तो ये सबको समाप्त कर देंगे अभी। तो ये माता लक्ष्मी को बोले, बोले ये इनकी पत्नी है, ये शांत करेंगे, आओ। किनको बोले? सब देवता लोग जाकर बड़ा चरण पकड़े, किनका? लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने लगे, आपका पति को शांत कराओ, नहीं तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा है? इनका काम ध्वंस करना नहीं है, कभी कभी और शंकर जी ने तांडव नृत्य करके ध्वंस करते हैं, लेकिन ये तो अभी स्वयं पालन करने वाले हैं, ये अभी ध्वंस का मूर्ति धारण कर ली, अभी क्या करेंगे हैं? ये तो हमारा पालन करता है। तभी लक्ष्मी जी ने बोले कि सब लोग जो इतनी प्रार्थना कर रहे, लक्ष्मी जी थोड़ा साहस करके सामने आए, लेकिन नृसिंहदेव को देखे एक बार, लिखिली रूप को, बोले कि बाप रे, ये मेरा बस में नहीं है, ऐसा रूप मैं कभी देखा नहीं, मेरा पति है, लेकिन ये अभी जो जिस स्थिति में मैं नहीं जा सकता है, मैं नहीं जा सकती, मेरे से संभव नहीं है। लक्ष्मी जी तुरंत भाग गए, पीछे चले गए, बोले नहीं मैं इनको शांत नहीं कर सकता है। तभी क्या किए सब लोग मिलके? प्रहलाद को भेजे है, प्रहलाद को बोले कि देखो प्रहलाद, ब्रह्मा जी ने बुलाया प्रहलाद को बड़े प्रेम से है, कह यारे लाला देखो है बेटा, ये तुम्हारे हैं पिताजी के कारण इतनी क्रोधित है, तुमको रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, तुम्हारे पिताजी के दुर्बुद्धि के कारण उन्होंने इतने प्रकट होकर, इतनी क्रोधित होकर इसको वध किए, अभी तुम्हारी ड्यूटी है मुझे कि शांत करो, नहीं तो हैं, नहीं तो पूरा संसार तीनों लोग ध्वंस हो जाएगा इनके क्रोध से। ब्रह्मा जी जो कहे कि माला दे दिए प्रहलाद के हाथ में, बड़े शांत शांत स्वभाव के प्रहलाद है, बड़े कोई कुछ जैसे नहीं जानते हैं, निरीह बालक, 5 साल की बालक, बस गार्लैंड लेकर चले गए कहां सीधे, उनको कोई भय नहीं हुआ। नृसिंहदेव की इतनी भीषण रूप को देखते हुए भी भयभीत नहीं हुए, कौन? प्रहलाद जी, क्योंकि सिंह की बच्चा सिंह को थोड़ी डरता है, डरता है चाहे सिंह कितना दुर्दांत है, हम कोई दूसरे पशु मनुष्य देखकर भाग जाते हैं, लेकिन सिंह की बच्चा फिर जाता है उसके पास। प्रहलाद नहीं डरे, प्रहलाद ने माला लेकर आस्ते आस्ते गए और तुरंत जाकर चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े। वह प्रहलाद को प्रणाम करते हुए देखते हुए नृसिंहदेव तुरंत जब देखे प्रहलाद प्रणाम कर रहा है, उनके सारे क्रोध एक सेकंड में उतर गया है, बड़े प्रसन्न चित्त में प्रहलाद को उठाए और इसके सिर पर हाथ रख दिए, कौन? नृसिंहदेव। और देवता लोग बड़े खुश हो गए, बोले अरे अभी भगवान पूरा हसमुख में आ गए, पूरा मुस्कान आ गया भगवान के, प्रहलाद के सिर पर हाथ रख दिए, और हाथ रखते ही भगवान की प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद जी की, प्रहलाद महाराज के शरीर में संपूर्ण रूप में क्या हुआ है, दिव्य ज्ञान में भर गया, पूरे सरचार्ज हो गया, सारे अज्ञानता कल्मषता सब नष्ट हो गया, संपूर्ण रूप में शरीर उनके दिव्य बन गया। किनके? प्रहलाद महाराज के दिव्य ज्ञान संचारित हो गया। तभी उन्होंने हाथ जोड़कर फिर स्तुति करने लगे है? तभी स्तुति करने प्रहलाद महाराज ने जब स्तुति किए उसी में प्रसन्न हो गए। कौन? नृसिंह भगवान। अतः इसके बाद नृसिंह देवी ने उनको गोद में लेकर बैठे में कहता था कि वो माने नृसिंह चतुर्दशी व्रत कह रहे किस प्रकार पहले से ही था, उसी इतिहास कहने के लिए। प्रहलाद महाराज बड़े शांत भाव से नृसिंह देव की गोद में बैठकर पूछ रहे थे कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी महान भक्ति कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने राक्षस घर में जन्म लिया हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में है, और एक राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण मेरे पास में कोई भी सद्गुण नहीं, सारे बदगुण से भरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरे कीर्ति को आपने बढ़ाया और मैं आपकी इतनी महान भक्त कैसे बन गया, मुझे नारद जी जैसे महान संतों के संग कैसे प्राप्त हो गया। तभी नृसिंहदेव ने प्रहलाद को समझा रहे कि प्रहलाद, इसमें कोई आश्चर्य होने का की बात नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में अवंती नगर में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था है? और जो ब्राह्मण है उसका 7 पुत्र थे, 7 पुत्र से तुम सबसे छोटा पुत्र था, तुम्हारा नाम था वसुदेव है? तुम्हारा नाम था वसु, तुम्हारे पिताजी ने रखा था, लेकिन तुम्हारे 6 भाई जो थे बड़े वो लोग सब शांत दांत ब्राह्मण के गुण सब उनके था, सम दम तपस उच्च ख्यांति आर जब एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम आदि ब्राह्मण के गुणों में विभूषित थे, ब्राह्मण के धर्म को पालन करते थे, लेकिन तुम ऐसे ही था, तुम ब्राह्मण का गुण तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम वेश्यासंगी था, शराब पीता था और मांसाहार करता था, ऐसे सभी प्रकार का बिना कारण से जीवों को वध करता था, ऐसे दुर्गुण से भरा था। एक दिन तुम्हारा पिताजी ने तुमको मार्ग पर देखा, बीच रास्ते में किसी वेश्या का हाथ पकड़कर तुम जा रहा चल रहा था, पिताजी तुमको देख के आया दूर से, और उस दिन जब तुम घर में आया धक्का मार के घर से निकल दिया, बोला ये घर से तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम ब्राह्मण कर वेश्या के साथ रहने वाला भाग यहां से, और सब भाई को बता दिया कि इसको घर में नहीं घुसने देना, इसके लिए हमारा इज्जत जाएगा, ब्राह्मण हमारा कुल का इज्जत जाएगा। सारे भाई लोग और पिताजी मिलकर उसको धक्का मार के निकाल दिए घर से। क्या करेगा बेचारा, संबंधियों के पास में गया, जो रिलेटिव थे रिलेटिव लोग भी समझ गए कि इसको जो निकाल दिया इसका वैसे बदगुण वाला व्यक्ति है, तो रिलेटिव लोग कहीं भी स्थान नहीं दे सो भगा दी। तब फिर वेश्या लोगों के पास गया, वेश्या लोग देखे ऐसे बस पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, धन नहीं, बोले बेकार का आदमी, चलो यहां से, भगा दिया धक्का मार के। अभी क्या करेगा, जंगल में घुसा, वन का अंदर घुस गया, जंगल के अंदर घुसते घुसते घूमते रहा दिन भर, रो रहा था, थोड़ा दुख होने से आंखें अश्रु आ जाता है, घूमते घूमते शाम तक ऐसे ही अंधार में घूमता रहा था, जंगल में जाकर एक नदी के पास पहुंचा, पवित्र नदी था, उस नदी में जाकर स्नान कर लिया, नदी में स्नान करके शाम के समय देखा कि नदी किनारे पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गया, और जब दुख होता है क्या होता है, आंख से अश्रु आ जाता है, दुख में सुमिरन सब करे है? सब लोग स्मरण करते भगवान को ऑटोमेटिकली है, दुख आ जाता और बेचारा क्या करेगा, दुख में अश्रु बहते रहता तो ऑटोमेटिकली उसके नाम से उसके मन से थोड़ा भगवान के नाम भी कहीं आ गया, याद आ गया, किनका, हरि, भगवान हरि विष्णु है, ऐसे ही भगवान के नाम भी थोड़ा एक दो चार बार पुकार लिया, और सोने के लिए प्रयास किया, शाम हो गया अंधार हो गया तो सोने के लिए प्रयास कर रहा था, सो नहीं पा रहा था, क्या आ गए मच्छर आ गए, काटने लगे उसको है, मच्छर काटने लगे, कीड़े मकड़े सब आ गए और सो नहीं पाया, रात भर इसे जागरण रहना पड़ा उसको, और नृसिंहदेव कहे कि ऐसे ही तुम रात्रि जागरण कर लिया, और सुबह सुबह फिर वो नदी में स्नान करके फिर थोड़ा भगवान को स्मरण किया, उस दिन मेरी ये व्रत का दिन था है? कौन सा दिन था वो, जिस दिन ये जंगल में भटकते भटकते रात्रि जागरण के साथ भगवान के थोड़ा नाम का उच्चारण किया, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि था, ओ मेरा व्रत की दिन था, नृसिंह चतुर्दशी का व्रत का दिन था, क्योंकि तुमने अज्ञान से इस व्रत को पालन कर लिया था, और इसी व्रत की जो पुण्य के माध्यम से सुकृति के माध्यम से तुझे किसके संग मिला, है, नारद जी के संग मिला। भक्ति कैसे मिलता है? भक्ति भक्त संगेन उपजायते, भक्ति भक्तों की संगति से मिलता है, है? भक्ति भक्त संगेन उपजायते, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तिन्हो मुख्य अंग, जितने में आप लोगों ने कहा सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल है भक्त संग, लेकिन भक्त संग कैसे मिलता है? सत्संग प्राप्यते पुंग भी सुकृत ही पूर्व संचित ही, पूर्व जन्म की सुकृति के माध्यम से सत्संग व साधु संग प्राप्त होता है। कौन सा प्रकार के सत्संग नहीं सॉरी किस प्रकार के पुण्य से व सुकृति से साधु संग मिलता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते कि तीन प्रकार की सुकृति होता है, कर्मनमुखी, ज्ञानमुखी और भक्तिन्मुखी सुकृति। कर्मनमुखी सुकृति जो कर्मकांड के माध्यम से कुछ सुकृति मिलता है, ज्ञान निर्विशेष चिंतन के माध्यम से कुछ सुकृति होता है, लेकिन भक्तिन्मुखी सुकृति जैसे एकादशी व्रत, नृसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, इसी व्रतों की इनको कहते हैं। कौन सा सुकृति? भक्तिन्मुखी सुकृति, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये सब माधव की तिथि है, भगवान हरि को प्रसन्न करने की तिथि। श्री अज्ञान से नृसिंहदेव कहे कि प्रहलाद को तुम अज्ञान से मेरे व्रत को पालन कर लिया था पूर्व जन्म में, और उसी सुकृति के बल पर तुझे नारद जी से महान संत का संग प्राप्त हुआ और तुम मेरी महान भक्त बन गए। तो इसलिए नृसिंह चतुर्दशी का व्रत को प्रहलाद महाराज ने भी इनके पूर्व जन्म में अज्ञान से पालन कर लिए थे। तो इसलिए आज जो व्रत है उसी दिन का है, वही जो नृसिंह देव का जिस दिन हरित मुनि और पद्मावती के पुत्र के रूप में बाल नृसिंह के रूप में उनकी गोद में आए थे, वो दिन है सत्य युग के प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से है? लेकिन आज की जो फिर भी लेकिन आम साधारणता आज के ये नृसिंह देव की हिरण्यकश्यप के वध की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि नृसिंहदेव की आविर्भाव तिथि में उनके कर्म को भी आलोचना करने से ही, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यतीत तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, भगवान के जन्म और उनके कर्म अभिन्न है, वो तो जन्म हुए थे, कर्म किए इधर कहां, जब हिरण्यकशिप को वध किए हैं, ये इनकी विशेष लीला है। इसलिए केवल जन्म के नहीं, जन्म का दिन उनके कर्म को उनकी लीलाओं को भी चर्चा करना आवश्यक है। नृसिंहदेव की लीलाओं को जो वर्णन करता है विशेष रूप में, आज के दिन दस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किस लिए वर्णन करना चाहिए इनको? सुखदेव गोस्वामी कहते कि कि जो कोई हाँ जय तत् पुण्यमाख्यान विष्णुर्वीर्य अपबृहित श्रधया श्रित्वा कर्म पाशैर्विमुच्यते। जो कोई भगवान विष्णु व नृसिंहदेव की सर्वव्यापकता विषय एक कथा को सुनता है और उसका कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आगे कहते कि एतद् य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां दैत्येन्द्र जूथपबधं प्रजातः पठेत् दैत्यात्मजस्य च मतं प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावं अकुतो भयमेति लोकां। प्रह्लाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे, जो कोई प्रह्लाद महाराज के कार्यकलाप तथा हिरण्यकशिपु के वध नृसिंह भगवान के द्वारा लीलाओं से संबंध इस कथाओं को अत्यंत मनोजोग से सुनता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, है? और जहां कोई भी व किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। तो इसलिए यदि आज नृसिंहदेव की चतुर्दशी व्रत व जन्मतिथि है, लेकिन आज उनकी लीलाओं को भी विशेष रूप में चर्चा करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। केवल भगवान प्रसन्न नहीं होते, कौन प्रसन्न होता? भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए कौन प्रसन्न होता? उनके भक्त भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार भगवान प्रसन्न ये नृसिंहदेव का लीलाओं को श्रवण करके ही, भगवान को प्रसन्न करके ही सुखदेव गोस्वामी वरदान देते कि वो कहां चला जाता है, नहीं इसको नारद मुनि कहते श्लोकों को, वो कहां जाएगा? भगवान नृसिंहदेव की हैं, दिव्य लोक को प्राप्त कर लेता है और जन्म मृत्यु संसार में वापस नहीं आता है। तो इसीलिए हम इन लीलाओं को आज चर्चा करते हैं। आज के श्लोक में कहा गया सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्यों को वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए है। कौन कौन भृत्य थे उनके, किसकी सत्य का वचन को पालन करने सत्य प्रमाणित किए भगवान ने? एक तो आपको समझ में आ रहा, प्रहलाद महाराज ने कह दिए, क्या कह दिए कि भगवान सर्वव्यापी है, कह दिए व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे प्रहलाद तुम सब समय बोल रहा है कि मेरे से भी कोई बलवान है, कि व्यक्ति कोई है, भाव विष्णु है, कहां रहता है विष्णु, कहां रहता है तेरे भगवान? कभी क्या बोले प्रहलाद ने, मेरे भगवान व्याप्तिं सर्वस्व सभी जगह पर व्याप्त है, अखिलेषु भूतेषु प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी रहते हैं और सर्वत्र उनकी स्थिति है, स्थावर जंगम है, जल स्थल आकाश कोई भी किसी भी वस्तु में सर्वत्र मेरे भगवान व्याप्त रहते हैं। प्रहलाद कह दी कि सर्वत्र रहते हैं, भगवान सर्वव्यापी है। तो इसको सत्य प्रमाणित करने के लिए कौन, भगवान ने देखे कि इनकी भक्त बोल दिया है, अभी डिक्लेयर कर दिया। हिरण्यकश्यप ने बोला कि तेरा भगवान सब जगह रहता, तेरे खंभे में भी है, सभा भवन में बैठा होता, सिंहासन में, बोले कि एक खंभा जो देख रहा सभा के बीच में, ये खंभा के अंदर क्या तेरा भगवान है? प्रहलाद कहे कि हाँ पिताजी मेरे भगवान भी इसमें है। प्रहलाद बड़े शांत भाव से, सरल स्वभाव, शांत रूप से बता, लेकिन क्रोधित होता था कौन, हिरण्यकश्यप। तो इसलिए आपने जो भक्त बोल दिया ऑलरेडी हाँ हमारा भगवान खंभे के अंदर है, तो भगवान को इसको प्रमाणित करना पड़ेगा है? भक्त की वचन को भगवान कभी टालते नहीं है, अपने वचन को टाल देते, लेकिन भक्त कोई कह दिया तो कोई बात को भगवान नहीं टालते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा गीता में, कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती पत्र तुमने इसको डिक्लेयर करो, प्रभुपाद ने इसको देखते तात्पर्य में, तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्तों की कोई विनाश नहीं होता, मैं डिक्लेयर करूंगा तो कभी इसको तोड़ सकता हूं, कभी कभी मेरा वचन में तोड़ देता हूं, लेकिन तुम यदि बोल दोगे एक बार फिर तुम्हारा वचन को मैं नहीं टालूंगा। मेरा भक्त कुछ बात बोल देता है, भगवान कहते कि मेरे भक्त के वचन को मैं कभी उल्लंघन नहीं करता हूं, है तुम डिक्लेयर कर दो मेरे भक्तों की विनाश नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के वचन जो दिए भक्त के बिना, भक्त जो बोल दिया है कि भगवान सर्वत्र रहते हैं, अरे खंभे में भी है, तो उसी को प्रमाणित करने के लिए कौन निकला, भगवान नृसिंहदेव उसी खंभे से प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए है? किसी आचार्य लोग ने ऐसे ही लिखते कि टीका में कि प्रकृत में वो खंभे के अंदर जो ये देखा रहा था, हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर खंभे की तरफ देख रहा, प्रहलाद देख रहे, प्रहलाद खंभे को देख रहे थे क्योंकि खंभे के अंदर ऑलरेडी नृसिंहदेव प्रकट होकर प्रहलाद को आश्वासन दे रहे थे, हे उधर मैं इधर ही हूं, डरना नहीं, और जितने बोल जो बोलेगा उसको जवाब दो, मैं हूं ऑलरेडी इधर, पहले से देख लिए थे कौन, क्योंकि जो उत्तम भक्त होते सर्वत्र भगवान को देखते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति, उत्तम वैष्णव जैसे प्रहलाद उनको तो सर्वत्र उनके इष्ट दिखाई पड़ते, कौन नृसिंहदेव, सर्वत्र नृसिंह को दर्शन कर रहे थे। अब बोले खंभा के अंदर है, खंभा के अंदर है, अब गुस्सा होकर जाकर लगाया दो मुट्ठी है पैर में, लगाया क्या गुस्सा में पैर में लात लगाया, हाथ में प्रहार किया, खड़ग उठा रहा था उसको, तुरंत भीषण गर्जना सुनाई पड़ा उस खंभे के अंदर से है? उस गर्जना कहां से आ रहा था, हिरण्यकशिपु सोचे कहां से ये आवाज आ रहा, कोई देखा नहीं कहां से आ रहा था, देखने के लिए चाहता था, चारों साइड देख रहा था कहां से आवाज आ रहा था, इस आवाज इतनी भीषण था कि इसकी जो आवाज कहां तक जा रहा था, ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्म लोक तक, शंकर जी के लोक तक, तीनों जगत में व्याप्त हो गया आवाज, आपकी माइक्रोफोन की आवाज कहां तक जाएगा है? नृसिंहदेव के पास में कोई माइक्रोफोन था, वो माइक्रोफोन में लेके आवाज कर रहे थे कि नहीं, वो खंभे के अंदर से ही इतने जोर से जो आवाज कर रहे थे तीनों लोक में व्याप्त हो गया, देवता लोग ने भी कंपने लगे, क्या होगा, कहां से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, भूकंप होने लगा पूरा है, कंपने लगा धरती पूरा, तभी है क्रोध में थे और थोड़ा इधर उधर देखकर हिरण्यकश्यप ने देखते देखते देखा कि अरे आस्ते आस्ते दिखाई पड़ने लगे, खंभे के अंदर से निकाले कौन, सिंहदेव पिघले हुए सोने की तरफ उनके शरीर का कांति शोभा पा रहा था। किनका है? नृसिंहदेव का। बड़े भीषण मूर्ति था। पहले तो ऐसे खंबे से निकले छोटे से दिखाई पड़ते खंबे आकृति का, लेकिन आस्ते आस्ते उनके शरीर विशाल होने लगा। इनके सिर के जो बाल है कहां टच करता था? आकाश को। सब इसके आकाश से वर्णन की गई, आकाश का जो मेघ है मेघ को टच करने लगा, और ऊपर कोई कोई देवताओं के एरोप्लेन जाता था, वो नृसिंहदेव की बाल में टकराकर वो जाकर कहां गिरा सो पता नहीं रहा है। एरोप्लेन जब सब आकाश में उड़ता था तो देवता लोगों के ऐसे घूमते थे देखने के लिए, युद्ध देख रहे थे ऐसे ऊपर घूमते, लेकिन नृसिंहदेव जब रूप को प्रकट किए विशाल होने लगे। नृसिंहदेव की जो बाल में सफेद शुभ्र रंग की बाल का थोड़े थोड़े टक्कर खा के सब कहीं कहीं कई जोजन के दूर में जाए गिर पड़े। कौन? एरोप्लेन सब है। इतनी विशाल रूप अस्तित विशाल रूप बन गए। तो वो बड़े सावधानी से देखने लगा हिरण्यकश्यप। अच्छा कैसा है ये रूप? ऐसा तो कोई मैं देखा नहीं। ये मनुष्य है ना, पशु है क्या है? शरीर तो मनुष्य का दिख रहा, सिर तो ये तो शेर का दिख रहा, सिर सिंह का है। तो बोला कि है कौन ये? थोड़ा सोचने लगा, बोला ये तो समझ गया वही जोगमाया ने जोग शक्ति में पूर्ण भरा हुआ कौन? विष्णु है। ये माया भी है, अभी दूसरे माया प्रकट किया हमारे सामने। मेरा भाई को मारा था किस रूप में? मेरा भाई को मारने के लिए सुअर का रूप ले लिया था, अभी मेरे सामने ऐसा रूप है। अरे मेरे क्या कर लगा? बड़ा हंसी लगा उसको। किसको? हिरण्य को। हंसने लगा जोर जोर से है? बोला मेरे सामने आ गया ये सिर्फ, देखो कैसा माया भी है। इसको शर्म भी नहीं है, कभी पशु का रूप ले रहता, कभी सुअर भी बन जाता है, और कभी कोई पशु भी बन जाता है, है? अभी सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर मेरे सामने ऐसे ही प्रकट हुआ है ना, ये मेरा क्या कर लेगा? मैं तो ऑलरेडी अमर वरदान मुझे मिल चुका, क्या अमर रहूंगा? मैं तो इनडायरेक्टली मांग लिया हूं ब्रह्मा से, ये मेरे क्या कर लेगा अभी? ये कहकर तुरंत गदा पकड़ लिया। कौन? हिरण्यकश्यप। गदा धारण करके जाकर तुरंत पिटाई करने लगा। किन को? भगवान को। और भगवान को पिटाई करता तो उनको कैसे लगता था? कोई कमल फूल का, जैसे कमल कमल के नार के साथ लेकर कमल फूल को ऐसे किसका ऊपर पिटाई करने से, हाथी का ऊपर, हाथी का क्या होने वाला है? भगवान ने तो बड़ा आनंद ले रहे थे, बोला अच्छा। बिना कारण से भगवान ने कुछ बोले भी नहीं, प्रकट हुए, लेकिन ये तुरंत जाकर गदा लेकर प्रहार करने लगा है? और भगवान ने बहुत से गदा के साथ ही उसको पकड़ ली। गदा भी था, गदा के साथ हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ लिया एक साथ, और पकड़कर पूरे अपने आयत में रख लिए। छत पीट हो रहा था, निकल नहीं पाया। कहां से? भगवान के हाथ से निकलना इसको कहां सकती? वो सोचता था कि मेरे समान और कोई शक्तिशाली नहीं है। भगवान ने आसान से एक ही हाथ में इसको पकड़ के ऐसे रख लिया, बस वो निकालने के लिए प्रयास करता था, निकाल नहीं पाता था। लेकिन भगवान ने जानबूझकर थोड़ा छोड़ दिया इसको है? एक बार छोड़ दिया, बोले कि मजा थोड़ा देखना है, है? कोई सिंह जो वो वर्णन करते इसको देखो ने नारद जी कि गरुड़ जी कभी सांप को पकड़ लेता, बड़ा सांप को मुख में रख लेता, फिर कभी कभी सांप को थोड़ा सा मजा देखने के लिए थोड़े से अंदर से बाहर छोड़ देता है, फिर सांप प्रजनन करता भागने के लिए, फिर पकड़ लेता उसको है? कोई सिंह के रूप में था, सिंह कभी कभी जो शिकार करता है, शेर कोई शिकार को पकड़ता है तुरंत तो खाता नहीं, मारना तो मारता नहीं है, थोड़ा मार के आधा मार के छोड़ देता, फिर इसको खाता है, बड़ा इसको उसका सब खेलता है एक जीव को मारने के समय है। तो नृसिंह देव तैसे ही थे, पकड़ लिया और एक बार थोड़े छोड़ दिए। जो छोड़ दिए हिरण्य कश्यप बाहर आ गया, सोचा कि अभी डर गया ये, मेरे को छोड़ दिया है, अभी मेरा बल ज्यादा हो गया, मुझे आयत नहीं कर पाए, छोड़ दिया बाहर। देवता लोग ने हाहाकार करने लगे, जंगल जी वो स्वर्ग में देख रहे थे, युद्धेव को ले आ रही, क्या होगा ये बच जाएगा तो अभी हमको छोड़ेगा नहीं, ये देख रहा है हम भी सब युद्ध देख रहे हैं इसका है? ये जब बच जाएगा समाप्त तो कर देगा हमको सब, भयभीत हुए। भगवान को कहे कि प्रभु इसका रथ मत खेलिए, समाप्त कीजिए जल्दी इसको है? थोड़ा समय खेलते रहा हिरण्यकश्यप अपने ढाल, वो तो गदा तो गया गिर गया था, तो ढाल और तरवाल ले लिया और चक्र की तरफ इतनी स्पीड में घूम रहा था अपने बचाने के लिए, खड़का लेकर भगवान के साथ गया फिर युद्ध करने है? कभी ऊपर चला जाता जोग शक्ति के बल पर ऊपर से, कभी साइड से चारों साइड से नृसिंहदेव को चक्कर काटता था। कौन? हिरण्यकश्यप है, मारने के लिए खड़का प्रहार करना चाहता था। अब भगवान ने फिर एक बहुत आसान से जो पकड़ लिए, वो खड़गे के साथ फिर पकड़ लिए बहुत आसान से है? भगवान थोड़ा खेल रहे थे क्योंकि जानते कि ये संध्या माने दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, इसलिए संध्या समय आने तक भगवान ने थोड़ा वेट कर रहे थे कब संध्या आएगा जब देखे कि सूर्य अस्त हो गया, अभी रात्रि होने, अंधकार होने वाला, संध्या समय आ गया, भगवान ने बहुत आसान से पकड़ के ले गए कहां, चौकाट के पास है, क्या बोलते उसको, चौकाट के पास ले गए, बस वहीं पर भगवान ने बैठे और उसको भूमि में मरेगा नहीं इसलिए गोद में ले लिए, अपने गोद पर रखे और अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं इसलिए नाखून में फाड़ डाले हैं। और मलो अधिक मास था, कोई मैंने जैसे ब्रह्मा जी ने जितनी वरदान दिया था ब्रह्मा जी का सारे वचन को रक्षा किया, इसलिए दो दो भृत्य का वचन को भगवान रक्षा किया है। तो कहते कि निज भृत्य भाषितम, एक भृत्य है प्रहलाद, दूसरे भृत्य कौन है, ब्रह्मा जी, तात्पर्य लिखते हैं दोनों का वचन को भगवान रक्षा किया। प्रहलाद को वचन तो रक्षा किए हैं कि प्रहलाद ने कहा था कि मेरे भगवान सर्वत्र, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ये मरेगा नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, जल स्थल अंतरिक्ष कहीं अंदर बाहर नहीं मरेगा, बारह महीने में नहीं मरेगा, सब ये बहुत जो ब्रह्मा जी का वरदान था, सभी वरदान को रक्षा करते हुए भगवान ने उसको मार डाले है। इसलिए कहते कि निज भृत्य भाषितम अद्भुत रूपम उद्वहन, अद्भुत रूप था किसका, नृसिंहदेव का, ऐसे अद्भुत न मृगम न मानुषम, न मृग था, मृग का अर्थात सिंह, न सिंह था न मनुष्य था, मनुष्य का शरीर और सिंह का मुख, ऐसे अद्भुत रूप को धारण करके भगवान ने खम्भे सभायां न मृगं न मानुषम, इस सभा के खम्भ से प्रकट हुए, ना मनुष्य था ना सिंह था, से अद्भुत रूप धारण करके भगवान ने अपने दोनों भृत्य प्रहलाद तथा ब्रह्मा जी के वचन को रक्षा करते हुए हिरण्यकशिप को विदारण कर दिए, संपूर्ण उसको समाप्त कर दिए। तब आप क्या शिक्षा प्राप्त करते इसमें, क्या शिक्षा मिला, भगवान ने मार डाले इसको हिरण्यकशिप को, अपने दोनों भृत्य के वचन को रक्षा करने के लिए प्रहलाद की और ब्रह्मा जी का वचन को रक्षा करते हुए इसको मार डाले, तो आपको क्या, आप क्या शिक्षा मिलता है इसको आपको है? आप भी ऐसे कहीं कुछ बल दोगे तो भगवान रक्षा करेंगे, प्रहलाद की वचन को और ब्रह्मा की वचन को भगवान ने रक्षा किया, तो आप भी ऐसे ही कुछ बोलोगे तो भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, सबको विश्वास है, विश्वास होने से रक्षा हो जाएगा, किसकी वचन को भगवान रक्षा करते हैं है? सरांग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, कृष्ण उसका वचन को रक्षा करते हैं जो प्रहलाद की तरफ आपको भक्त बनना पड़ेगा, जो प्रहलाद भक्त ब्रह्मा जी की तरफ जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो संपूर्ण समर्पित है, उसकी वचन को भगवान रक्षा करते हैं, नहीं तो आप जो बद्धजीव है भगवान जानते हैं, ये इसका वचन हर दो घंटे में चेंज हो जाएगा, बाव हर सेकंड में, अभी बोलेगा कुछ और फिर आधा घंटे के बाद वो बदल देगा अपना बात है, ऐसा नहीं, इसलिए शरणांग शरणागति, जो शरणागत के सारे लक्षण को जीवन में उतार चुका भक्त, ऐसे भक्त की वचन को भगवान रक्षा करते हैं, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार है, शरणांग शरणागति हुई बेजहार, नरोत्तम दास ठाकुर कहते जो शरणागत के सभी लक्षण को, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्व वरण अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार है, सड़ांग शरणागति ये छह लक्षण शरणागति के, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जना, ये छह शरणागति के लक्षण को जीवन में उतार लिया प्रहलाद महाराज की तरफ, तो फिर वो जो भी बोलेगा उसका भगवान इसकी इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं है? हम जैसे बद्ध जीव है, हम कुछ बोल देंगे तो भगवान थोड़ी रक्षा कर लेगा है? आप बोलेगे अभी बोलेगे यहां बैठ बैठ के मैं अभी एक सेकंड में न्यूयॉर्क सर्क में पहुंच जाऊं, भगवान आपका इच्छा पूर्ण कर देगा नहीं, तो शरणागत तो होना पड़ता है, इसलिए प्रसंग तो शुरू हो गया कहां से, हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होता है भगवान विष्णु को, कहा कि हमारा फैमिली एनिमी है, तपस्या करने जाता भगवान बनने के लिए मंदराचल में, तभी जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, कई हजार साल तक तपस्या करते रहा, इधर घर में नहीं आया, तभी देवता लोग ने बोले कि अरे इसका पत्नी अभी गर्भवती है, कौन कयाधु, आई एक हिरण्यकश्यप पता नहीं क्या क्या करे हमको इतना सताया, अभी हिरण्यकश्यप है नहीं, और ये जो इसका पत्नी का गर्भ में दूसरा हिरण्यकश्यप का यानी बाप से बढ़कर कौन होता, बेटा बाप से बढ़कर होता है, पता नहीं ये कौन सा राक्षस फिर जन्म लेगा उसका पत्नी के गर्भ में, पकड़ो इसको, इसको समाप्त करते। इसलिए इसको पकड़ लिया, किसको? देवता लोग का आसान से और राक्षस लोग देवताओं को नहीं, देवता लोग को रुक नहीं पाए, राक्षस को परास्त करके आए, उसके अंतपुर में घुसे, उसका पत्नी को पकड़ ली, किसको? कयाधु को। कयाधु को पकड़कर इसका, वो नहीं आना चाह रहे थे, कुरोरी पक्षी की तरफ रो रही थी, चिल्ला रही थी, पति तो नहीं थे, पति तो तपस्या में, और इसलिए उसके बाल केस को पकड़कर खींच के ले जा रहे थे, कौन? देवता लोग। नारद जी को सहन नहीं हुआ, नारद जी आ गए मार्ग में, कहिए क्या कर रहे हो, हाँ? तुम लोगों को लोग कहते देवता, देवताओं की ऐसे काम है, एक अवा स्त्री जिसका पति है नहीं, उसकी अनुपस्थित में तुम इसको, सती स्त्री है और उसी के क्रोध से, उसी की अभिशाप से तुम सारे नष्ट हो जाओगे, इसको छोड़ो तुरंत। इंद्र कहा कि देखो नारद जी, आप थोड़ा चिंतन कीजिए, ये साधारण स्त्री नहीं, ये स्त्री कौन है आपको पता लगना चाहिए। नारद जी बोले कि मेरे को अच्छे से पता है, हैं? बोले नहीं, ये मिसेस हिरण्यकशिपु है, हैं? कौन है? हिरण्यकशिपु की पत्नी है, मिसेस हिरण्यकशिपु। नारद जी कहे मुझे पता है अच्छे से, बोले ये गर्भवती है, ये पेट में दूसरा हिरण्यकशिपु है, उसको हम, इसको नहीं मारेंगे, स्त्री को, स्त्री हत्या पाप, इसको लेकर रखेंगे बंदी करके, उसका पुत्र जब समाप्त, इसका जन्म लेगा, उसको तुरंत मार डालेंगे। तो भगवान ने कहने, नारद जी कहे कि तुम लोग मूर्ख हो, हैं? इसका गर्भ में जो पुत्र है वो भगवान की महान भक्त है, तीनों लोक में कोई भी शक्ति नहीं उसको वध करने का, हैं? सारा शक्ति एकत्रित होकर तुम देवता लोग कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान हरि के महान भक्त, तुम जिसको राक्षस समझ रहे हो राक्षस नहीं है, वो महान भक्त है भगवान के, हैं? उसको तुरंत मेरे जमींदारी में दे दो, स्त्री को, उसका पति आने तक वो मेरे पास रहेगा, मेरे आश्रम में रहेगा, फिर उसको हिरण्यकशिपु आने बाद मैं इसको जमींदारी दूंगा, और ये पुत्र उसी का वध का कारण बनेगा, तुम्हारा वध का कारण नहीं बनेगा, किसका वध का कारण बनेगा, मैं इसको अच्छा ट्रेनअप कर दूंगा, छोड़ दो मेरे पास, है? नारद जी कहने पर छोड़ दिए उस लोग, नारद जी के आश्रम में रहता था, नारद जी चाहते थे कि कयाधु को गर्भ में जो बच्चा है उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए प्रत्येक दिन नियमित रूप से नारद जी उनको भागवत सुनाते थे, उपदेश सुनाते थे, कयाधु तो स्त्री थी, वो सुनते सुनते थे और निकल जाती थी, एक कान से सुनते थे कि वो किसको चिंतन करती थी, अपने पति की चिंतन करती थी, हिरण्यकशिपु की चिंतन में थी, अब उसको कृष्ण कथा कहां से कान में घुसेगा, लेकिन प्रहलाद एक ध्यान से सुनते थे मां की गर्भ में, और हिरण्य नारद जी की इच्छा था कि ये बच्चे के हृदय में दिव्य ज्ञान उदय हो जाए, एक महान भक्त नारद जी की इच्छा था, इसलिए भगवान इनकी इच्छा पूर्ण की, मां की गर्भ में जब यदि वो थे प्रहलाद, सारे नारद जी के उपदेश को धारण करने में सक्षम हो गए, हैं? इसलिए हम पहले से ही नारद जी ने मां गर्भ में ही उनको टनाप कर दिए, आज जब बात में हिरण्यकशिपु आया, नारद जी ने लेकर दे दिए, बोलो देखो तुम्हारा पत्नी को मैं जब रखा था, लो संभालो, फिर ने कुछ नारद जी के ऊपर बड़ा खुश हो गया, है? बोला बहुत अच्छा, नारद जी कितने अच्छे हैं, नारद जी बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो किसी के अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वो किसके पास में जाते, हिरण ने कुछ किया, रावण किया, तो कंस किया, देवता के पास जाएंगे, राक्षसों के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तीन लोग में सब आदर करते, किन को? नारद में, नारद को देखता तो कोई भी सीट में खड़ा हो जाता उठ के, है? हिरण्यकशिपु बोला नारद जी कितने अच्छे हैं, मेरे पत्नी को ये देवताओं से बचा कर रखा, अब ये देवताओं को छोड़ूंगा नहीं, बस नारद जी को लड़ाई देखने बड़ा आनंद आता है, तो फिर गया हिरण्यकशिपु, स्वर्ग आक्रमण किया, सारे देवताओं को बंदी बनाए, भगा दिया, बोला कि सब अभी से आओ, उसे प्रणाम कर, सबको अभी मैं पाठ पढ़ाता हूं, है? और सभी देवताओं को बंदी बना के रख दिया, बोला कि बस, है? कहा कि देखो, किसको कहा? सूर्यदेव को बोला कि देखो आपका ड्यूटी क्या है, क्या ड्यूटी? मेरे कपड़ा को साफ करके आयरन करके ला के पहुंचाना। अग्निदेव को बोला कि डेली कुकिंग करने का, जितने मेरे कुकिंग में जितनी आंच आने का इतने ही तुम डायरेक्ट स्वयं कुकिंग करना, कुकिंग करके मील रेडी करके रखना, है? है? इंद्र को धमकी दिया, बोला देख बारिश जिस समय में जितना ही जरूरत मेरा राज्य में इतना ही बारिश करना, यदि बाढ़ आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसको? इंद्र को। सभी देवताओं को अपना शक्ति माने पूरा है कंट्रोल में रखा। वरुण देव को कहा कि देखो ऊपर ज्यादा उठना नहीं, समुद्र है पानी, जल का देवता है, सभी देवताओं को पूरा कंट्रोल करिए। जब देख तो आंख को देखता था देवता लोग कंपते थे, इतनी प्रतापी क्यों तपस्या करके वरदान वरदान लेकर ब्रह्मा से आया था, सताने लगा और कह दिया कि सबको बोलो देखो राज्य में सब यज्ञ करना बंद कर दो, ये देवता लोग शक्ति कैसे मिलता है, यज्ञ में इनको आहुति दिया जाता है इंद्र स्वाहा इंद्राय स्वाहा ना ये सब करके इनको वो शक्ति मिलता है, ये बंद करो यज्ञ करना। यज्ञ कैसे बंद होगा, ना जितने सब गाय है इनको सारे कसाई घर में भेज दो, सब काट के फेंक दो, क्योंकि ये जो गाय का दूध है उसी से घी बनता तभी यज्ञ करते, दूध नहीं होगा तो घी होगा कहना यज्ञ करेंगे, ये सारे गाय को समाप्त करो है? कौन आजकल संकट यही चल रहा है क्या, गोहत सब कसाई घर है और इन्होंने कुछ भी स्टार्ट कर दिया था, बोला सबको गाय को समाप्त करो, ब्राह्मण यदि कोई वेद मंत्र उच्चारण करता देखते हुए इसको शिखा पकड़ कर खींच के मेरे पास लाना तुरंत है, उसका दाढ़ी को उखाड़ दो हाथ नहीं छीन के है, बड़ा ऐसे ऐसे बड़ा कदर जात बड़ा सब बंद, हरि नाम कोई ले कोई विष्णु का नाम उच्चारण नहीं कर सकता, भगवान मैं हूं, कौन भगवान है, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, सब लोग जयध्वनि होता था, देवता लोग भी आते थे तो बोला बोल के आना पड़ेगा मेरे पास, गेट में घुसते ही देवताओं को भी बोलना पड़ता था क्या भगवान क्या करेंगे, बोल नहीं बोलेगा तो अभी थप्पड़ लग जाए पैसा साथ साथ है? तो बोला भगवान हिरण्यकशिपु की जय, बड़ा बोझ तब सिंहासन में बैठ के भगवान बन गया, लेकिन ये छोटा सा बालक था उसका उसी का ही पुत्र था कौन प्रहलाद, जन्म लिया आस्ते आस्ते छोटा बड़ा बड़ा होने लगा, 5 साल होगा गुरुकुल में भेज दिया, बोला जाओ बेटा पढ़ो संधामर्क के स्कूल में है, शुक्राचार्य के 2 शिष्य थे संधामर्क, उनके स्कूल में भेज दिया और उनको पढ़ाते थे वो लोग पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स राजनीति है समाज नीति सब पढ़ाने लगे, और कई प्रकार की सब क्या टेक्नोलॉजी भी सब पढ़ाने लगे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सब सब बहुत पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस भी होता होगा नहीं उसमें पता नहीं, सब पढ़ा है पढ़ाते रहे, लेकिन प्रहलाद तो बैठकर क्लास में हाँ हाँ करते थे बस, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन टीचर लोग चले जाते थे रिसेस में कहाँ अपने घर में चले जाते थे, थोड़ा भोजन करके आएंगे लंच लेंगे थोड़ा रेस्ट करके फिर आने चले जाते थे, बच्चों को छोड़ के चले जाते थे चलो आप खेलना क्या रिसेस है खेलकूद करो, छुट्टी हो जाता प्रहलाद जी ने सब बच्चों को बोलते इधर आओ सब आओ सबको इकट्ठी कर लेते, बोले खेलना है नाचना है लेकिन ऐसे ही नाचना नहीं जाता, बहुत सुंदर मंत्र बोलाऊंगा उस मंत्र को गा के नाचेंगे हैं क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सबको नचाते थे प्रहलाद नाचो 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 गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बस सबको नचा रहे थे, फिर इसके बाद थोड़ा थक गए बोले अभी बैठो मैं प्रवचन देता हूँ थोड़ा सुनो, बैठ जाए बैठा दे, और राजा का पुत्र है उसके बाद कौन नहीं सुनेगा, हिरण्यकशिपु का पुत्र है सम्राट के पुत्र है, तब सब बड़ा सम्मान देते थे प्रहलाद, बड़े देखने में बड़े सुंदर थे बड़े शांत स्वभाव के थे, सब बढ़ जाते थे बोले कि टीचर जो पढ़ाया था उसको सब भूल जाओ अभी मैं पढ़ाता हूँ सुनो है? है तभी प्रवचन देना शुरू कर दिए कौन प्रहलाद, अरे राक्षसों की पुत्रों मैं जो बोलता हूँ वही सुनो, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत इह है दुर्लभ मानुसंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, देखिए भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति 5 साल उम्र से शुभारंभ कर देना चाहिए क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है बार बार नहीं मिलता है, ये यदि अध्रुव है अन्य जीवन की तरफ इसका भी विनाश हो जाता है शरीर मनुष्य शरीर का भी नाश हो जाता है अंत में मृत्यु हो जाता है, लेकिन फिर भी विशेष अर्थ है मनुष्य शरीर का, क्या करेगा मनुष्य शरीर में है मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म राधा कृष्ण का भजन करने के लिए है, सुन रहे कि नहीं प्रहलाद मारे समझा रहे थे अपने बच्चों को जो सहपाठियों को है, आगे कहेगी देखो सुख दुख इसकी चिंतन मत करो, सुखं इंद्रियकं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुख जत्मतः, कहेगी सुनो राक्षसों के पुत्रो कोई दुख नहीं चाहता है संसार में, दुख न चाहने पर भी उनको दुख आता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, इसको दुख जितना मिलने का भोगेगा दुख, उसी प्रकार सुख अंग इंद्रिय सुख भी यदि कोई नहीं चाहता सुख के लिए प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है, तुमको जितना सुख मिलने का तुम पूर्व जन्म के प्रारब्ध है जितना अपने आप तुमको मिलेगा, तुम क्यों उसके लिए टाइम व्यस्त बर्बाद करोगे, समय जो मिला है किसके लिए हरिभजन के लिए, इसके अगले सुख में कहने लगे तत्प्रयास न कर्तव्यम जटायु वय परम न तथा बिंदते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम, ऐसा प्रयास मत करो। कैसा? धन कमाने का। डिग्री ले लो आईआईटी से, कोई बड़ा कॉलेज से डिग्री लेकर क्या करो? पैसा कमाने के। ये तत्प्रयास प्रहलाद महाराज के ऐसा प्रयास नहीं करना धन कमाने का। मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। यही आधुनिक सभ्यता है। डिग्री ले लिया बिजनेस करेगा, नहीं तो क्या करेगा? नौकरी करेगा, पैसा कैसे भी पैसा लाएगा। पैसा लाना और इंद्रिय तृप्ति करना, उसके माध्यम इंद्रिय तृप्ति के मेन माध्यम है धन। प्रहलाद महाराज कहते तत्प्रयास न करते, ऐसा प्रयास नहीं करना। जथा आयु भय परम, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का अवधि सीमित है, बड़े मूल्यवान है समय है, इसलिए इस समय में किसे उपयोग करना चाहिए? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद की भक्ति करने के लिए है। प्रहलाद महाराज आगे समझाए, देखो जो मूर्ख लोग है जो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं, मनुष्य जीवन का अवधि तो 100 साल मान लिया गया, 100 साल में तो जो 12 घंटे लोग सो के बिता देते हैं, तो ऐसा ही सही 50 साल इनमें सोने में चले जाता है। 100 साल परमायु से जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे फंसे हुए लोग 12 घंटे सोने में देते, तो परमायु का 50 साल किसमें चला गया? सोने में बिता दिया। अब अंतिम समय बुढ़ापा में 20 साल चले जाता है, अब बचपन में खेलकूद में 10 साल और उसके बाद फिर कैसर अवस्था में, इसके उधर से लड़के लड़की परस्पर को देखते हैं, ये दुनिया प्रकार की मन के उत्तेजना होने के कारण वो 10 साल चले, 20 साल शुरू से 20 साल अंत में बीत जाता है, 40 साल चला गया, 50 साल सोने में गया और ये 40 साल ऐसा ही बीत गया, और कितना बचा? और 10 साल ऐसा ही प्रज्वलप करते करते वृथा गुमा देते हैं, ऐसा ही सारा जिंदगी बेकार हो जाता है, और अंत में जमराज के दूत आकर बांध कर इसको पकड़ के ले जाता है। ऐसा समय को व्यतीत नहीं कर मत करो, जो समय मिला इसको हरि भजन में लगाओ। प्रहलाद महाराज ये प्रवचन देकर सारे को भक्त बना दिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहते थे कि हमारे इस्कन का यही ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? सब स्कूल कॉलेज में जाकर, ये सब संधम वर्ग का स्कूल है, जितने भी स्कूल कॉलेज है किसका स्कूल है? यहां पर कोई भगवान हरि के भजन सिखा रहा है? भगवान विष्णु के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सब इंद्रिय तत्व की शिक्षा, यही शिक्षा प्रहलाद महाराज को प्राप्त होता था। संधम वर्ग का शुक्राचार्य के स्कूल है, सारे स्कूल कॉलेज वही जड़ विद्या जत माया वैभव, ये सारे संधम वर्ग के स्कूल है, इसलिए इसमें जाओ और कैसे भी कायदे कुछ उपाय करके 2-4 प्रहलाद बनाकर, 1-2 प्रहलाद बना के वही छोड़ दो। उस कॉलेज के अंदर जाकर 1-2 अच्छे प्रहलाद भक्ति सिखाओ, सिखाकर उसकी छोड़ दो, बोला यही पढ़ते रहो तुम और दूसरे को पढ़ाओ। तो टीचर लोग पढ़ाता है उसको छोड़ दो, तुम अपने बेस बनाओ और बेस बनाकर उसको इनवाइट करो, इधर प्रसाद खिलाओ और नाच इनको नचाओ, नाचो गाओ, फिर इनको प्रवचन दो और इनको स्वभक्त बना दो। प्रभुपाद नहीं कहे, और प्रैक्टिकल अभी हो रहा है सही है, हमारे मंदिर से भी कोई बेस खुल के सब टर्न अप कर रहे हैं लोगों को, है ना? क्या बना रहे हैं उनको? प्रहलाद के चेले बना रहे उनको, तो ऐसा ही करना। प्रहलाद महाराज शिक्षा देकर सबको देते, लेकिन एक दिन हिरण ने किसी को सोचा कि मेरा लाला क्या सीख रहा है, थोड़ा देखता हूं, उसको बुलाया। दोनों शिष्य को संध्या मर्क को कहा कि मेरे पुत्र को लेके आओ, क्या पढ़ाए हो थोड़ा मैं देखता हूं। और वहां गए संध्या मर्क तो प्रहलाद को लेकर, प्रहलाद को हिरण्य कश्यप बड़े आनंद से, अपने बाला अपने स्वयं का पुत्र है, अपना लाला अपने हाथ से लिया, गोद से उसके सिर को सूंघा, बड़े आश्वासन से बार बार उसके चुंबन खा रहा था उसके मस्तक में, और उसको लेकर बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाकर सिंहासन में बैठा था। तीनों लोक की अधिपति हिरण्यकशिप को अपने छोटा सा लाला, नन्हा से लाला बाप मैं किसको, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठा, बोला बेटा प्रहलाद तूने गुरुकुल में क्या सीखा, जो सबसे अच्छा जिला का कि सबसे जो बेस्ट शिक्षा तू प्राप्त किया उसको बताओ, एकदम जो टॉप मोस्ट शिक्षा मिला। तभी प्रहलाद ने कहे कि पिताजी ठीक है बताता हूं। क्या बताने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्मा निवेदनम इति पुंसार पिताश्चेत भक्ति भक्तिश्चेत नवलक्षण। नवलक्षण भक्ति का कहने लगे। हिरण्यकशिपु तो क्रोध में कंप कर देख रहा था, प्रहलाद को नहीं किसको देख रहा था, वो दोनों खड़े थे जो टीचर जो पढ़ाने वाले, और वो लोग कंपनी लगे बोले हम नहीं बोले कुछ सिखाए नहीं इसको, हमने नहीं जानता, हमने ही सिखाया इसको, माफ करना आप माम ब्राह्मण है, आप ऐसे मैंने बिना कारण से हमारे प्रति क्रोध करोगे तो आपका शक्ति नाश होगा, आप ऐसे क्रोध मत कीजिए, हमने कोई सिखाया नहीं इसको, वो कहां से सिखा हमको तो पता भी नहीं। तभी हिरण्य कश्यप ने सलाह देखा कि वो लोग बोलते पढ़ाए नहीं इसको, प्रहलाद को देख रहे, प्रहलाद तो पूरे एकदम शांत है, कुछ जानते नहीं जैसे ऐसे बैठे, हालांकि मेरा लला भी तो बड़ा शांत है। इसका मति को कोई वैष्णव लोग ने छद्म वेश धारण करके बिगाड़ दिया है, हैं? कोई छद्म वेश में इसको पढ़ा, मैंने आकर ऐसे ही कुछ पढ़ा दिया, अब इसे टीचर ने बोला कि सतर्क रहो, और कोई जैसे वैष्णव लोग ऐसे तिलकधारी कोई तिलक पिलक मिटा करके कोई सूट शर्ट पहन के भी आ जाते होंगे हैं स्कूल में, है ना, कॉलेज टीचिंग करते हैं सूट शर्ट पहन लेते कोई जरूरत पड़ता तो, है? तो बोला कि ऐसे ही करके कोई आ जाता है तिलक कंठी को, मैंने तिलक भले छुपाई कंफी कहीं कुर्ती के अंदर छुपा कर कंठी फंटी आके पढ़ा दिया मेरे बेटा को उसको, मैंने बोला कि ठीक है पर आप फिर उसको सुधार दिया, कैसे सुधारेगा ये सिक्किया ऐसा ही तो उसको कैसे सुधरेगा। फिर ने कोई सोचा कि बेटा तुम बोला जो बोला ठीक है, लेकिन इसमें से एक शब्द को उठाकर वहां पर मेरे नाम लिखना पड़ेगा और सारे को सारा परफेक्ट है। कौन सा शब्द को उठाना पड़ेगा? विष्णु। कहा कि ये शब्द को हटा देना बेटा, श्रवणम कीर्तनम जो ये जो शब्द है, हिरण्यकशिपु वो नाम भी लेना नहीं चाहता, कहा कि इसी जगह पर मेरे नाम लिखो, श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। प्रहलाद कहे कि नहीं ये मैं नहीं स्वीकार करूंगा। क्या स्वीकार नहीं करेगा? नहीं पिताजी, भगवान तो कौन है? विष्णु है, मेरे बात को नहीं सुनेगा। उठे गोद में लेकर फेंक दिया पूरा नीचे, जो आदर कर बैठा था गोद से नीचे फेंक दिया। कौन? हिरण्यकश्यप। घृणा, इसको घृणा आ गया है, इतने आदर कर रहा था, बोला क्या रे मेरे को भगवान नहीं मान रहा है, बोला कि विष्णु भगवान है। तो भी संधामर कह के देखिए ठीक है, अभी बालक है 5 साल के, अभी थोड़ा हमको और थोड़ा समय दीजिए, हम इसको लेकर अच्छा से टेंड अप करके दोबारा लेके आएंगे। और संधामर कहने पर फिर हिरण्यकश्यप दोबारा छोड़ दिया संधामर के साथ, लेकिन प्रहलाद क्यों बदलेंगे? अब वो तो और पढ़ाए और प्रचार करने शुरू कर दिया इस पे, और रिसेस में और अच्छा प्रचार करके देखिए कि 2-4 साल में सारे को सारा कॉलेज के जितने उसके संधामर कॉलेज में जितने थे सारे को सारे भक्त बन गए। सभी लोग हरे पर कोई क्लास में कोई टीचर की बात नहीं सुन रहा, वो सब हरि कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन संधामर का आ गया, बोले क्या कर रहे रिसेस के समय? देखिए कि सभी लोग मिलकर नाच रहे गा रहे हरे कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे। बोले क्या हो गया तुम, बंद करो। तो अभी प्रहलाद को पकड़ के लेके आए, बोले कि अरे ये सब सर्वनाश कर दिया सारा इसको, पूरा कॉलेज को कॉलेज सबको सब क्या बना दिया। सब पकड़ के ले आए हिरण्य को, बोले कि आह हम लोग और पारेंगे नहीं, इससे मेरा सारा कॉलेज को बिगाड़ दिया, ये सबको सारे 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 भक्तों को विष्णु भक्त बना दिया ये, अभी संभालिए आपके लड़का को, नहीं तो आप फिर हमको दोष देंगे। हम तो इसको सुधारने के लिए कोशिश किया, सारे सकल प्रचेष्टा विफल हो गया, अभी संभालिए इसको। हिरण्य को बोला समझ गया सारे समस्या क्या हो गया। तभी डिसाइड कर लिया कि इसको जान से मार डालूंगा। किसको? प्रहलाद को। तभी सैनिकों को बोला कि ये इसके प्रति दया भाव मत रखो, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा भाई का शत्रु, मेरा परिवार के शत्रु, कौन? विष्णु का है सहायता करने वाला है, इसको किसी भी कड़े बड़े कौशले किसी भी मुहूर्त में इसको मार डालो। सभी लोग मिलकर जितने वीर इधर पर सभा में है सभी मिलकर इसको समाप्त करे, इसी मुहूर्त में इसको मार डालो। सभी अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस लोग आ गए हिरण्य कश्यप को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र उनको प्रहार करने से कुछ होता है नहीं, अस्त्र शस्त्र से उतर गए। प्रहलाद चुपचाप खड़े हैं, उनके शरीर में अस्त्र शस्त्र स्पर्श भी नहीं कर रहा। हिरण्यकश्यप बोला क्या हो रहा है, तुम लोग मार नहीं पा रहे एक व्यक्ति को? हरिदास ठाकुर को जैसे वो काजी ने ऑर्डर दे दिया कि इसको लेकर 22 बाजार में पिटाई करके समाप्त कर दो, और वो पिटाई करके थक गए, उनका हाथ सब फट गया, लेकिन वो हरिदास ठाकुर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज को ने हरिदास ठाकुर को भी प्रहलाद के अवतार कहा जाता है, वो ब्रह्मा तथा प्रहलाद के मिलित अवतार है, है? और उसको पिटाई करने के हरिणा ने प्रहलाद को इतने पिटाई के कुछ नहीं हुआ, अस्त्र शस्त्र में आघात करने कुछ नहीं हुआ, लेकर आकाश मैंने जो 5000 फीट के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से समुद्र में फेंके तब भी कुछ नहीं हुआ। हाथी का पैर में पागल हाथी का पैर में डाल दिए, हिंसु जंतु के बीच में फेल दिए कि सिंह बाघ है खा जाए, कोई नहीं, वो तो सिंह बाघ और चाटने लगे उसके शरीर को हैं बड़े प्रेम से। बोले क्या हो रहा है? सांप का 20 लाकर पिला दिया जहर, उसमें भी मरा नहीं। लास्ट में बोला कि अरे मेरा ये बहन को बोला है, होलिका को बोला है, अरे बहन इधर आओ, तुझे तो एक सिद्धि पता है। क्या सिद्धि? आग का अंदर प्रवेश करने से भी तेरा शरीर जलता नहीं, ये प्रहलाद को लेकर आग का अंदर घुस जा, इसको जला दे आग में। प्रहलाद को लेकर होलिका आग के अंदर घुस गई, विशाल अग्नि जल रहा था उसके अंदर घुस गई, तो क्या हुआ? वो खुद ही जल गई क्योंकि वैष्णव अपराध किया, उसका सिद्धि समाप्त हो गया, वो जल गई और प्रहलाद तो और तेजस्वी बनकर, जैसे सोना को आग में डालने से और उज्जवल दिखाई पड़ता प्रहलाद, और अंदर से बाहर से निकल के आ गए आग के अंदर से। हिरण्य कश्यप बोला कि क्या करूं, ये तो मरेगा नहीं किसी भी हालत से, इसलिए अंतिम में सभा भवन में बैठा हुआ था, सभा भवन में बैठा था, प्रहलाद को बोला, प्रहलाद बोला प्रहलाद तुमको इतना शक्ति कहां से आता है, है? मैं क्रोधित होता हूं तीनों लोग कंपता है, सारे 33 कोटि देवता कंप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और तू 5 साल के मेरा ही पुत्र होकर तुझे भय भय नहीं आता है, इतनी शक्ति तुझे कौन देता है? बोला पिताजी ये दुनिया के सारे शक्ति का उत्स एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? विष्णु। विष्णु नाम सुनते ही गर्जना करने लगा, मूर्ख तुझे शक्ति देता होगा तू उसको भजन करता है, मैं तो विष्णु का नाम नहीं, मुझे थोड़ी विष्णु शक्ति देता, मैं अपने शक्ति से बड़ी मां बलियान है, हैं? विष्णु बार बार तू विष्णु का नाम मेरे सामने ले रहा है, तेरा विष्णु रहता है? बोला पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र व्याप्त है, जैसे श्लोक में कहा गया व्याप्ति भूतेशु अखिलेशु आत्म, सब सर्वत्र मेरे प्रभु व्याप्त है, स्थावर जंगम सर्वत्र, जहां भी देखोगे मेरे प्रभु है, सर्वत्र है। कहे तेरा प्रभु सर्वत्र है तो खंभे के अंदर में क्या है? सभा खंभे दिख रहा है उसके अंदर है? बोला उसके अंदर ही पिताजी है। तो क्रोधित होकर लगाया लात, मुठी लगाया, लात लगाया तो भयंकर गर्जन करते हुए नृसिंहदेव प्रकट हो गए। ये कहां पर घटना हुआ है? कहां पर है जगह? अभी कहां पर है? अहबिल्लो नृसिंह है, नृसिंह क्षेत्र सारे आंध्र में है, अहबिल्लो पर्वत जो है जिसमें अहल बिल्लो नृसिंह, वो पर्वत की चीटी में जो जाते हैं बहुत कठिन, थोड़ा चढ़ के जाना पड़ा, कुछ लोग जाते भक्त लोग ऊपर में टॉप में, आज भी कहते कि वो खंबा है जिस खंबा के अंदर से नृसिंह देव प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिप की राजधानी वो इस पर पहाड़ के ऊपर बना के रखा था, उस पहाड़ के ऊपर उसकी राजधानी बना के रखा था, और उसी सभा में वो खंब जिस खंब से भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए थे अभी वो खंब है, उसी खंबा का भग्न रूप वहां पर है, और उसमें से टुकड़े शिला लाकर आज भी लोग इनको अभिन्न नृसिंहदेव से अभिन्न समझकर पूजन करते हैं। तो इस प्रकार नृसिंहदेव प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए। हरितमुनि और पद्मावती के पास में तो बाल नृसिंह के रूप में शांत मूर्ति में बाल रूप में ही प्रकट हुए थे, और यहां पर प्रहलाद को रक्षा करने के लिए उग्र मूर्ति में प्रकट हुए हैं, भीषण काय, भक्त को रक्षा करने के लिए भीषण उग्र मूर्ति धारण करके है समाप्त कर दिए। इसलिए जो भक्ति के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रहलाद जी एक महाजन है, उनके आदर्श पर नृसिंहदेव की पूजन करते हैं। इस कर्म में प्रारंभ से शुरू से प्रभुपाद जी ने नृसिंह के पूजन के बारे में कुछ बोले नहीं थे, लेकिन बाद में जब सांस फ्रांसिस को रथ यात्रा शुभारंभ हुआ उसी रथ यात्रा में कुछ ब्लैक लोग थे, मैंने ब्लैक बड्डी में सब बड़े बड़े कुछ गुंडे लोग थे, उन्होंने धमक दिया कि तुम्हारा ये रथ यात्रा बंद करो, बंद नहीं करोगे तुम्हारे गुरु को हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे गुरु को अटैक करेंगे, मार डालेंगे। तो इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु गर्गमणि प्रभु ये सब कहे कि प्रभुपाद जी आप नहीं आने का रथ यात्रा में, आप गुंडे लोग धमक दिया है, उन लोगों को हंगाम करेगा, रथ यात्रा बंद करने कह रहा है। प्रभुपाद जी ने कहे कि मैं तो जाऊंगा रथ यात्रा कैसे भी हो, प्रभुपाद माने नहीं जितने कहने पर भी, तो फिर बाध्य हो कि प्रभुपाद जी को कार में छुपा के ऐसे ही इनडायरेक्ट ऐसे रास्ता मिले कि आ गए रथ यात्रा, प्रभुपाद जी रथ में चढ़ गए, लेकिन ये गुंडे लोग सत कुसत सब आ गए, अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण करना शुरू कर दिए। आ तो फिर कुछ भक्त लोग तो जो फाइटिंग कर रहे थे उनके साथ, और कुछ लोग गए पुलिस स्टेशन बोलने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उस रथ के ऊपर से ही खड़ा होकर कहे कि अभी मैं एक मंत्र देता हूं, तुम लोग इस मंत्र को उच्चारण करो और भगवान नृसिंहदेव ये सारे मूर्खों को भगा देंगे। तो प्रभुपाद ने रथ के ऊपर से मंत्र प्रदान किए, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दाईने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलटंकनखालये, इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामी ततो नृसिंह बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंह मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवकर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज तो इसी प्रकार ये मंत्र को पहले बार प्रभुपाद जी ने कहां प्रदान किया सान फ्रांसिस्को रथ यात्रा में रथ के ऊपर खड़ा होकर प्रभुपाद जी ने मंत्र बोलने लगे सारे भक्त इस नृसिंह प्रार्थना को जब उच्चारण करने लगे गाने लगे जोर से सच कुछ सारे वो जो गुंडे अपने अब भाग गए पुलिस आ गया उस समय सब आ गए सब पुलिस मैंने ये सब भाग गया अपने अब तब से पूरा भक्तों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि कोई बाधा विघ्न आता है तो तुरंत नृसिंह वंदना गाने से सारे बाधा विघ्न नष्ट हो जाता है। संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो कर्मकांड के आधार पर किसको पूजन करते हैं है? गणेश को पूजन करते कहते गणेश को आगे पूजना चाहिए कर्मकांड की ऐसी विधि है लेकिन गणेश जी को शक्ति कहां से मिलता सारे बाधा विघ्न को नष्ट करने के लिए नृसिंहदेव को नृसिंहदेव उनकी आराध्य है गणेश जी नृसिंहदेव को आराधना करके उनसे शक्ति प्राप्त करके सारा बाधा विघ्न को नष्ट करते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट नृसिंहदेव के शरण में जाते हैं क्योंकि हमको कोई भौतिक चीज जरूरत नहीं है हमको भक्ति चाहिए। भक्ति की बाधा विघ्न को नष्ट करने के लिए स्वयं नृसिंहदेव हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं जुगे जुगे उन भक्तों को रक्षा करके आया है जैसे प्रह्लाद को रक्षा किए इसी प्रकार आपकी भी यदि भक्ति में कोई बाधा है विघ्न है कौन नष्ट करेगा नृसिंहदेव। इसलिए नृसिंहदेव के स्मरण करना चाहिए विपद में भगवान नृसिंहदेव भक्ति के और भक्तों के सारे बाधा विघ्नों को समाप्त करने के लिए हैं। इसलिए उनकी आविर्भाव तिथि में सभी को व्रत रखना जरूरी है। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि जो आज के नृसिंह चतुर्दशी का दिन व्रत धारण करता है 1000 द्वादशी व्रत महाद्वादशी व्रत जैसे हम द्वादशी व्रत करते हैं कभी कभी एकादशी द्वादशी एक साथ आते हैं जैसे क्या कहते हैं महाद्वादशी 1000 महाद्वादशी व्रत पालन करने की जो फल है एक नृसिंहदेव का ये चतुर्दशी व्रत को धारण करने से वो फल मिलता है 1000 महाद्वादशी व्रत का फल का है? मिल जाता है। इसलिए नृसिंहदेव को प्रसन्न करने के लिए सबको व्रत रखना चाहिए है? और हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखा था काजी ने देखा जो मृदंग तोड़ा था मृदंग तोड़ा भक्तों को तंग किया तो क्या देखा रात में सप्न में कौन आ गया है? वो तो जानता नहीं तो नृसिंहदेव क्या देखा कि एक व्यक्ति आ गया उसका से मुख कैसा शेर का है आकर धमकी दिया इसको है उसके छाती पर चढ़ गया और कहा कि है तू मेरे भक्त का तू मेरा संकीर्तन को बंद करना चाहता है, इस टाइम तुझे क्षमा कर दिया और नाखून लगा भी दिया, बोला दूसरा बार आएगा तो दूसरे बार तुम बाधा देगा कीर्तन में तो साथी को फाड़ दूंगा। और जब महाप्रभु से भक्तों को लेकर संकीर्तन में गए तो काजी ने दिखाया महाप्रभु को कि सतकुशत उसे नाक का नाखून का निशान था, किसका, काजी का आश्रय है। जो भी कोई भी महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में बाधा देता है तो नृसिंहदेव प्रकट होते हैं इसको समाप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले जो भगवत्ता का परिचय दिए है शिवासंगन में, किस में प्रकट हुए, नृसिंह रूप में, वीरासन में नृसिंह रूप में बैठे भक्तों को दर्शन दिए। कि शिवास ठाकुर बड़ा भयभीत थे, ये सब धमकी दिए थे उनके पड़ोसी लोग कि तुझे क्या कर रहा है, कीर्तन बंद कर गया कि नहीं तेरे घर, ये रात भर सोने नहीं देता हमको, नहीं तो तुम्हारा घर बार से उखाड़ के लेके गंगा में फेंक देंगे और तुम्हारे चारों भाई को वो काजी के पास कंप्लेन कर देंगे, अरेस्ट होके जाओगे जेल में। तो बड़ा डर गए थे कौन, शिवास ठाकुर। इसलिए महाप्रभु ने सुबह सुबह भागते भागते गए और उसके ठाकुर घर में, उसके डेटी के रूम में घुस के विष्णु के आसन पर बैठकर बोले, शिवाशिया अभी तक तो मुझे पहचाना नहीं, कौन हूं, देख कौन हूं। तुरंत ही शिवास देख रहे थे किस रूप में, सिंह रूप में, कहे मेरा वंदना कर, स्तुति गाओ। तो भगवान भगवत्ता को नृसिंह रूप में सबसे पहले प्रकट किए शिवास, चैत्य गौरांग महाप्रभु शिवासंगन में सबसे अपने भगवत्ता का प्रकट किया तो परिचय दिए, तो भगवान के रूप में नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। संकीर्तन आंदोलन को रक्षा करने के लिए काजी के पास में भी नृसिंह रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार कई उदाहरण है, आज भी नृसिंहदेव ये संपूर्ण इस्कन के जो संकीर्तन आंदोलन को रक्षा करते रहते हैं। भक्तों की जो भी संकट आता है किसको स्मरण करते हैं, नृसिंहदेव को, नृसिंहदेव प्रत्यक्ष रूप से भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रह्लाद नृसिंह भगवान की, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नंद महाराज भी अपने लालाओं को बचाने के लिए इनको प्रार्थना करते थे, किनको, दोनों लाला कौन, कृष्ण बलराम, बोले बार 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 राक्षस लोग आक्रमण करते थे, इसलिए नंद महाराज ने भी, नंदगांव में नृसिंह मंदिर है, नंद महाराज डेली जाते थे नृसिंहदेव को पूजा करते थे, मेरे दोनों लाला को रखा ठीक से रखना, ठीक है, हरे कृष्ण।